તારીખ 14/11/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 500 અને 501 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 132
વિજયભાઈ ના પ્રશ્ન આવ્યા છે, એની થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. ગઈકાલના સત્સંગમાં થયેલ સત્પુરુષની ભક્તિના વિવેચન બાબતમાં પૂછવાનું કે સત્પુરુષની વાસ્તવિક ઓળખાણ થયા વગર શું યથાર્થ ભક્તિ થઈ શકે? સત્પુરુષની વાસ્તવિક ઓળખાણ થતાં તો યથાર્થ ભક્તિ થાય, પણ એ પહેલાં કોઈને જીવનની ઇસકે પહેલે કિસી મુમુક્ષુ કો અપને જીવન મેં કઈ પ્રકાર કી ઉલઝને અકુલાહટ ઓર એસે એસે પ્રસંગ મેં સમાધાન આયા હો ઓર બહોત બડી આકુલતા સે બચ ગયે હો ઓર ભક્તિ કે પીછે કોઈ સકામતા ન હો, નિષ્કામ ભાવ સે પહેચાન કે પહેલે ભી ભક્તિ યદિ હોતી હૈ તો ઉસકો પહેચાન હોને કી પૂર્વ તૈયારી યાનિ નિર્મલતા હો સકતી હૈ. પહેચાન કે બાદ કી જો યથાર્થ ભક્તિ હૈ ઉસકે પૂર્વ મેં એક કારણ રૂપ નિષ્કામ ભક્તિ હો સકતી હૈ. ઓર ઉસકો એ યથાર્થ કરકે નિકાલ દેના ઠીક નહીં હૈ. દૂસરા સત્પુરુષ કી વાસ્તવિક પહેચાન यानी अपना स्वरूप की पहचान नहीं है क्या? ऐसा नहीं है. अपना स्वरूप की पहचान इसके बाद आती है, तो इसके ऊपर का स्टेज है. दोनों एक बात नहीं है, जबकि कारण कार्य का संबंध हो सकता है कि जिसको सत्पुरुष की पहचान आई उसको आत्मस्वरूप की पहचान आ सकती है. और कल वो विषय चला था कि जिसको सत्पुरुष की पहचान होती है उसको ही आत्मस्वरूप की पहचान होती है. सत्पुरुष की पहचान हुए बिना किसी को आत्मस्वरूप की पहचान हो जाए शास्त्र पढ़ने से या सुनने से या चर्चा करने से या चिंतन मनन करने से हो जाए, ऐसा नहीं बनता. इसलिए वो हां में नहीं जाता. यदि हां तो फिर सत्पुरुष की भक्ति यानी अपने स्वरूप की भक्ति हो गई ना. लेकिन वो हां नहीं है, फिर भी सत्पुरुष की भक्ति में स्वरूप की भक्ति का कारण मौजूद है ऐसा समझना चाहिए. वो कार्य नहीं है लेकिन कारण अवश्य है, ये बात है. क्या यो भक्ति से ही दर्शन होकर क्षय होकर के अभेदता सद्धती है कि पीछे अभेदता साधना का कोई दूसरा भी क्रम है? ये भक्ति से दर्शन मंद होता है और ये उत्तम उपाय है सरल भी है और दूसरे भी अनेक प्रकार के ऐसे परिणाम हैं कि जिसमें दर्शनों का अनुभाग कम होता है और उस क्रम में अपने परिभ्रमण संबंधित वेदना से लेकर के पूर्णता का लक्ष्य को लेकर के स्वरूप प्राप्ति की भावना और जिज्ञासा को लेकर के निजावलोकन और भेद ज्ञान का विषय इस क्रम में आता है। भेद ज्ञान से भाववासन होता है तो एकदम दर्शन मोह का मंदता इतनी हो जाती है कि वो उपशम के योग्य हो जाता है उसी काल में, और फिर सम्यक सम्मुखता होकर के उपशम सम्यक दर्शन को जीव प्राप्त करता है, उसी वक्त वो मोक्ष मार्ग में प्रवेश करता है। और कोई प्रश्न बाकी रहे हैं?
नहीं।
यही अनादि स्थित पावे नहीं गुरु गम बिना, यही अनादि स्थित, तो यही अनादि अनंत वस्तु स्थिति है। इसका अर्थघटन क्या करना, यही अनादि स्थित का, क्योंकि काव्य में तो जितने शब्द और मात्रा के समावेश होती है उतना ही प्रयोग होता है त्रास मिलाने के लिए, लेकिन अनादि अनंत ये वस्तु स्थिति है। वस्तु स्थिति मैंने ये वस्तु की मर्यादा है, इसके बिना कभी किसी को ज्ञान हुआ हो या होगा ऐसा नहीं बनता। वो 194 नंबर का पत्र जो है उसी पर ही लिखा है, रूपालु देव ने इसी मुद्दे पे ही लिखा है, और उसमें जो कोई सबूत दिया है वो अपना दिया है कि हमको ज्ञान प्राप्ति ऐसे ही हुई थी, हुई है ऐसा नहीं लिखा है, हुई थी। मैंने हमने भी अनेक प्रकार के धर्म साधन किए थे लेकिन ज्ञान प्राप्ति नहीं हो रही थी। जब कोई महापुरुष मिले, ज्ञानी पुरुष मिले, तभी हमको उनकी संगति से और उनकी सेवा से जब इनकी पहचान हुई और हमको उसकी अचल प्रतीति आई, सम्यक प्रतीति आई और अचल प्रेम हुआ उसके प्रति, तभी हमको ज्ञान प्राप्ति हुई है। इसके बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। अपूर्व ज्ञान अपूर्व पुरुष की प्राप्ति के हुए बिना नहीं होता। स्वाध्याय में अपने ले लिया, वो पुत्र आ गया कि अपूर्व ज्ञान अपूर्व विचार बिना नहीं होता, और अपूर्व विचार अपूर्व पुरुष के मिलने बिना, मिले बिना नहीं होता। जगह जगह पे वो बात है, बहुत सी जगह पे वो बात किया है, और इसे 194 में वही कहा कि यही बात ऋषभदेव भगवान ने अपने 98 पुत्र को कही थी। जो हमने बात कही वही बात ऋषभदेव भगवान ने एक कोड़ा कोड़ी सागर के पहले अपने 98 पुत्र को कही थी। देखो कृपालुदेव को कहां से मालूम हो गया, और यही बात सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को कही थी। दो दृष्टांत क्यों लिया, और बीच में परीक्षित राजा का ले लिया कि सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को कही थी। ये तीन बात कहने के पीछे क्या कारण है कि सतयुग के प्रारंभ में भी ऐसा बना, आदिनाथ भगवान के काल में भी ऐसा बना, और अंतिम तीर्थादिनाथ जो महावीर स्वामी हुए उसके शासन में अंतिम केवली हुए, जो पंचमारा में मोक्ष में गए, जम्बू स्वामी मथुरा 84 से गए, वो मोक्ष में गए तो यही मूल में कारण था और यही बात किया था। तो पहला केवली और अंतिम केवली और बीच में जो कुछ हुआ सब में कोई फेरफार नहीं है, यही यही नीति रही, यही पॉलिसी रही है। श्री सूर्यपुर स्थित शुभेच्छा प्राप्त श्री लल्लू जी, सूर्यपुर मैंने सूरत, आज का जो सूरत है उनको सूर्यपुर भी कहते थे। यहां उपाधि रूप व्यवहार वर्तता है, बंबई से लिखते हैं कि यहां जो हमारा व्यवसाय है उसमें अनेक प्रकार की उपाधि युक्त कार्य चलते हैं। बहुत करके आत्म समाधि की स्थिति रहती है, बाहर में व्यवहार उपाधि रूप है, भीतर में आत्म समाधि की स्थिति रहती है। ये हमारा अंतर परिणति का जो भी प्रवाह है वो प्रवाह आत्म समाधि रूप यथा योग्य चलता है। क्यों? कि जो भी उपाधि जनक व्यवहार है उसके साथ हमारा आत्मीयता से कोई लगाव नहीं है, उसमें हमारा आत्मापना नहीं है कि मेरा व्यवसाय है, इसमें लाभ हुआ तो मेरा लाभ हुआ, नुकसान हुआ तो मुझे नुकसान हो गया, वो बात नहीं होती है। जो भी प्रारब्ध अनुसार होने वाला है वही होता है। हम तो उसको देखते रहते हैं कि ये संसार का खेल कैसा होता है। बहुत करके आत्म समाधि की स्थिति रहती है तो भी यह व्यवहार के प्रतिबंध से छूटने का बार बार स्मृति में आया करता है। समाधि रहती है, समाधान आता है, इसलिए हमारे परिणाम उसके त्याग के नहीं होते हैं ऐसा नहीं है, फिर भी हमारा परिणाम उसका त्याग करने का ही रहता है। क्योंकि ये प्रवृत्ति जितनी अंश में होती है वो भी हमको अनुकूल नहीं है। तो भी यह व्यवहार के प्रतिबंध से छूटने का बार बार स्मृति में आया करता है। यह प्रारब्ध की निवृत्ति होवे वहां तक तो व्यवहार का प्रतिबंध रहना योग्य है, इसलिए समुचित होकर के स्थिति रहती है। दो प्रकार के परस्पर विरुद्ध परिणाम एक साथ साधक दशा में साधक को हमेशा हमेशा चलता है। इसके त्याग के भी बारंबार स्मरण होता है और ऐसे प्रारब्ध जहां तक पूरा नहीं होगा वहां तक ये प्रतिबंध रहेगा, इसलिए संभाव चित्त में समाधान भी रहता है और विकल्प भी आता कि ये छूट जाए तो अच्छा है। दोनों प्रकार के परिणाम एक साथ चलता है और ये हमेशा हमेशा सबको चलता ही होता है, ऐसा ही चलता रहता है। उसका निषेध नहीं आए ऐसा भी नहीं बनेगा और इसका असमाधान रहे वैसा भी नहीं बनेगा। जो भी व्यवहारिक कार्य है जिसमें राग द्वेष मोह की प्रवृत्ति है, ये राग द्वेष मोह का निषेध भी आए बिना रहेगा नहीं, और उसके निमित्तों का उसे छुटने का भी विकल्प आए बिना रहेगा नहीं, और इस विषय में अंतरंग में समाधान भी आएगा और रहेगा और संभव भी रहेगा। एक परिणाम में परस्पर विरोधी दो अंश, एक परिणाम के एक पर्याय में ये परस्पर विरोधी दो अंश हमेशा हमेशा चलता रहता है। कभी किसी अंश की मुख्यता से वचन प्रयोग होता है, कभी किसी अंश की मुख्यता से वचन प्रयोग होता है, लेकिन दोनों बात होती है, ये बात हमारी समझ में होनी चाहिए, तो हम उनको बराबर पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे, और हमको कभी शंका कुशंका का अवसर आएगा नहीं, वरना शंका होगी ऐसा क्यों होता है, ज्ञानी को ऐसा क्यों होता है, लेकिन दोनों बात होती ही है।
तो वैसे बनने वास्ते तो द्वंद्व समचित्त के
उसमें क्या है कि जो संभाव या समचित्त रहता है वो बलवान वंश होता है, वो बलवान परिणाम होता है, यानी शुद्धि के परिणाम बलवान होते हैं, और जो अशुद्धि के परिणाम होते हैं, उपाधि के परिणाम होते हैं, वो कमजोर होते हैं, उसको माइनर अंश गिना जाता है। मेजर जो परिणाम है वो आत्मशुद्धि के होते हैं ज्ञान दशा में, लेकिन होते हैं दोनों। अगर एक हो अशुद्धि का तो अज्ञान और मिथ्यात्व रहेगा, ज्ञान दशा और साधक दशा नहीं रहेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो और अकेले शुद्धि के परिणाम होगा तो सिद्ध दशा हो जाएगी, इसमें कोई अशुद्धि है ही नहीं। इसलिए शुद्धि अशुद्धि का मिश्र धर्म, उसी का नाम ही साधक दशा है। न अकेली अशुद्धि होती है, न अकेली शुद्धि भी होती है, बीच में ऐसा ही होता है। और अशुद्धि ते ते क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां अंते थाए निज स्वरूप मां लीन जो। तो जो अशुद्धि है वो प्रति समय कमजोर और कम होती जाती है, और निज स्वरूप मां आखिर में लीन हो जाएगा, तो पूर्ण शुद्धि हो जाएगी। ये सबको ऐसा ही होता है साधक दशा में। उदय में भी भिन्नता होती है, लेकिन अंदर की जो परिस्थिति है वो वैसे ही होती है। मुमुक्षु में भी ऐसा है, जो मुमुक्षु है उसमें कई प्रकार की क्षतियां भी होती है, पर कुछ अच्छाई भी होती है। अगर बिल्कुल अच्छाई नहीं हुई तो मुमुक्षुता नहीं है, पर क्षति नहीं होती तो वो ज्ञान दशा में आगे बढ़ करके पूर्ण हो जाएगा जल्दी से जल्दी, तो ऐसा नहीं बनता है। मुमुक्षु को भी दोनों के प्रकार के परिणाम देखने में आएगा। तो जिसका वजन मुमुक्षु के दोष प्रति होएगा उनको समाधान नहीं आएगा कि देखो इसको तो ऐसा हो रहा है, इसको तो ऐसा हो रहा है, तो उनको इसके प्रति थोड़ा गड़बड़ होगा। और जो अकेले गुण को देखेगा तो भी थोड़ा उसको पहचानने में तकलीफ आएगी। तो जैसा है वैसा समझना है, जो मुख्य उसको मुख्य करो, गौण है उसको गौण करो, मुख्य गौण अवश्य करना पड़ेगा। आपका लिखा हुआ पत्र एक संप्राप्त हुआ है, योग वाशिष्ठ आदि ग्रंथ की वाचना होती हो तो वह हितकारी है। देखो योग वाशिष्ठ ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है, जैन संप्रदाय का लिखा हुआ, जैन संप्रदाय के महात्मा का लिखा हुआ नहीं है। वशिष्ठ थे वो रामचंद्र जी के गुरु थे और उनके नाम से रामायण के कितने प्रसंग, रामचंद्र जी के और रामायण के कितने प्रसंग उस ग्रंथ में है, इसलिए उसको योग वाशिष्ठ रामायण कहते हैं। उसका नाम भी पूरा नाम तो योग वाशिष्ठ रामायण ऐसा लिखा है। उसमें दो प्रकरण बहुत बढ़िया है, एक मुमुक्षुता का और एक वैराग्य का। रामचंद्र जी के 16 साल की उम्र में जब वो युवानी में प्रवेश कर रहे थे तब इसका वैराग्य कितना था और कितनी मुमुक्षुता थी, उसका बहुत अच्छा वर्णन वो दो प्रकरण में आया है। और वही कृपालु देव पढ़ाते थे मुमुक्षु को, तो लल्लू जी को लिखा है कि एक ग्रंथ की माचना होती हो तो वो हितकारी है, आपके लिए भी वो हितकारी है। देखो क्या सुझाव दिया, हितकारी लिख शब्द का प्रयोग किया है, अन्य मत का है इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा, वो बात नहीं लिखी है। क्योंकि ज्ञानी हमेशा तत्व को देखते हैं, जहां भी तत्व है वो तत्व उपाधि है, और तात्विक दृष्टि कराने के लिए उसका स्वाध्याय भी कराएंगे। जिनागम में प्रत्येक आत्मा को मान करके परमाणु परिमाण में मैंने प्रमाण में अनंत आत्मा कहे हैं। अब जिनागम और वेदांत के विषय में कंपेरेटिव क्या क्या बात है उसका वर्णन करते हैं। विषय ऐसा चला है इस पत्र में कि जिनागम में तो प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है ऐसा मान करके इसका प्रमाण मैंने संख्या का प्रमाण अनंत आत्मा है जगत में ऐसा कहा है। प्रत्येक आत्मा को अलग अलग भिन्न भिन्न सेपरेट एंटिटी है प्रत्येक आत्मा के, ऐसे अनंत आत्मा संख्या से इस विश्व में है। और वेदांत में प्रत्येक कहने में आई सर्वत्र चेतन सत्ता दिखते हैं वह एक ही आत्मा की है और आत्मा एक ही है ऐसा प्रतिपादन किया है। वेदांत में दूसरा प्रतिपादन है कि विश्व में एक ही आत्मा है, उसको वो परम ब्रह्म कहते हैं, एक ही आत्मा है। तो फिर अलग अलग सत्ता मैंने मौजूदगी एग्जिस्टेंस अलग अलग दिखता है इसका क्या, तो कि जो सर्वत्र चेतन सत्ता देखती है अलग अलग आत्मा की वो भी एक ही आत्मा की सत्ता है, एक के ही सब अंश है ऐसा कहते हैं। जैसे अनेक पर्याय एक आत्मा का अंश है वैसे अनेक आत्मा भी एक परब्रह्म का अंश है ऐसा वो लोग कहते हैं। ये दोनों बात मुमुक्षु पुरुष को अवश्य करके विचार करने योग्य है। अब देखो वो मत मतांतर में जाने का निषेध करते थे और अन्य मत की चर्चा छेड़ी इस पत्र में, दोनों बात का विचार तो मुमुक्षु को करना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या मानने से सत्य का अनुसरण होगा, ये बात का विचार करना चाहिए। क्या कहते हैं कि ये दोनों बात का मुमुक्षु पुरुष अवश्य करके विचार करना चाहिए, विचार करना योग्य है और यथा प्रयत्न से उसको विचार करके निर्धार भी करने योग्य है, अपने आत्मकल्याण के हेतु से उसका निर्धार करना चाहिए, प्रयत्न करना, समझने का प्रयत्न करना यथा योग्य, पर उसका यथार्थ निर्णय भी करना चाहिए। यह बात निसंदेह है, ऐसा विचार करना और निर्णय करना ही चाहिए, इसमें शंका करने योग्य नहीं है, संदेह करने योग्य नहीं है। तथापि जब तक प्रथम वैराग्य और उपशम का बल दृढ़पने से जीव में आया न हो, वहां तक इस विचार से चित्त का समाधान होने के बदले चंचलपना होता है। देखो, ये बात रही सिद्धांत की, इस विश्व में आत्मा एक है या अनेक है, अलग अलग संप्रदाय में उनके भिन्न भिन्न सिद्धांत जब प्रतिपादन हुए हैं तो उसका विचार करना चाहिए, उसका निर्धार करना चाहिए, लेकिन कब? कि वैराग्य और उपशम का बल दृढ़ होने के बाद। इसका मतलब क्या हो गया? कि सिद्धांत ज्ञान है वो वैराग्य उपशम के समेत होना चाहिए, बिना वैराग्य उपशम सिद्धांत ज्ञान को कोई अभ्यास में लेता है तो उसको क्या होता है कि उसका चित्त समाधान नहीं प्राप्त हो करके चंचलता को धारण करता है। कैसे चंचलता आती है? कि अन्य संप्रदाय में भी जो महात्मा हुए, जिन्होंने अपने आगम लिखे, वो भी अपने संप्रदाय के महापुरुष गिने गए हैं, माने गए हैं। अब ये बात होगी कि ये भी महापुरुष थे, वो भी महापुरुष थे, इनके भी इतने बड़े बड़े और इतने संख्या में अनुयायी है, तो क्या सब लोग नहीं समझते क्या? वहां कोई बुद्धि वाले होते ही नहीं क्या? हाँ, इतने संख्या में जब होते हैं और उसमें भी कोई स्तर तो कोई ऐसा मास भी होता है जो इंटेलिजेंट मास बोला जाता है, तो वो लोग थोड़ी ना भूल करते, सब थोड़ी भूल करते, और इतनी संख्या वाले भूल करते हैं। जैनी तो कम है आजकल, रजिन तो ज्यादा है, तो उसका चित्त डामाडोल हो जाएगा। जैसे अपन ले ले अभी कि गांधी जी थे, वो विषम संप्रदाय के थे, मोड बनिए थे, हमारी ज्ञाति के थे, हमारे तो सात आठ पीढ़ी के बाद ग्रैंड फादर कहते थे कि संबंध में थे, तो बहुत बुद्धिमान थे और कोई युगानुयोग से हिंदुस्तान की आजादी भी इनके हाथ से हो गई, आज अपन राष्ट्रपिता उसको कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। और वही जब उलझन में आते थे तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरे जीवन में जब जब मैं उलझन में आया हूं, मूंझवण थई छे, तब तब मैंने कवि रायचंद जी की सलाह सूचना मार्गदर्शन लिया है और मेरे जीवन में इसकी बहुत बड़ी छाप है और उपकार है, वो बात उन्होंने कहा है। अब वो भी महात्मा गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसके गुरु के स्थान में कृपालु देव थे, फिर भी वो इस लाइन में नहीं आए, वो जैन मार्ग में भी नहीं आए और कृपालु देव का अनुसरण भी उसने नहीं किया, जबकि प्रशंसा अवश्य की है। तो बुद्धिमानी होना वो कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे वो यथार्थ समझ होती है, योग्यता होनी चाहिए और ये खास प्रकार की योग्यता होती है तो जीव सन्मार्ग में आता है, चाहे बुद्धि कम हो चाहे बुद्धि ज्यादा हो। सन्मार्ग में आने के लिए तो खास प्रकार की योग्यता चाहिए। लेकिन सिद्धांत का विषय जो है ये वैराग्य उपशम का बल दृढ़ता रूप से जीवन में आया हो ना आया हो वहां तक ऐसे विचारों से चित्त का समाधान होने के बदले चंचलता को, संदेह को, शंका को प्राप्त होता है। क्योंकि जो गांधी जी को अनुसरण करेंगे वो कहेंगे क्या गांधी जी में अक्कल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, सारे इतने ब्रिटिशरों को तो भगा दिया और काफी सत्य के खोजी थे और गुण के प्रति अनुराग वाले थे, तब तो कृपालु देव का संग किया। फिर भी इनका भजन राजनीति पर रहा तो धर्म नीति चुक गए। अगर धर्म नीति पर भजन रहते तो राजनीति छूट जाती और आत्म कल्याण हो जाता। इसलिए सिद्धांत शास्त्र का अभ्यास वैराग उपशम दृढ़ रूप का निर्णय वो यथा योग्य रूप से कर सकता नहीं। इसलिए कभी कभी मुमुक्षु कृपालु देव को ऐसे प्रश्न पूछते थे तो उत्तर ऐसा देते थे कि वो बात आपके लिए अभी विचारने योग्य नहीं है, आगे जाकर के इसका विचार आप करने के समर्थ या योग्य हो सकते हैं, अभी आपकी योग्यता नहीं है, ऐसा करके उनको प्रश्न का उत्तर भी नहीं देते थे। इस विचार का निर्धार प्राप्त होता नहीं तथा चित विक्षेप प्राप्त करके यथार्थपने से बाद में वैराग्य उपशम को धारण कर सकता नहीं। और नुकसान क्या होता है कि चित्त में विक्षिप्तता हो जाती है और उसको वैराग्य उपशम आना मुश्किल हो जाता है। वैराग्य उपशम में वो आ नहीं सकता जी, मतलब ज्ञान की शुष्कता हो जाती है तो वैराग्य उपशम को वो धारण कर सकता नहीं है, शुष्क ज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए यह प्रश्न का समाधान ज्ञानी पुरुषों ने किया है उनको समझने के लिए। इस जीव में वैराग्य उपशम और सत्संग का बल हाल तो बढ़ाना योग्य है, फिलहाल तो बढ़ाना योग्य है। देखो कोई प्रश्न उठा है इस विषय में, योग्य योग वाशिष्ठ पढ़ते हुए कोई प्रश्न उठा है तो क्या लिखा कि इसका समाधान ज्ञानी पुरुषों ने किया है उसको समझने के लिए फिलहाल तो जीव को वैराग्य उपशम और सत्संग का बल बढ़ाना चाहिए। एक बात और लिया, वैराग उपशम अकेला नहीं, सत्संग भी साथ साथ जरूरी है। अकेला वैराग उपशम नहीं काम में आएगा, सत्संग साथ में चाहिए, तो वो बात साथ में ले लिया है। ऐसे अपने में विचार करके जीव को अपने में ऐसा विचार करके वैराग्य आदि बल बढ़ने के साधन आराधने का नित्य प्रति विशेष पुरुषार्थ योग्य है। इसलिए ऐसा विचार करके उसमें तो वो बात तो जरूरी है, सैद्धांतिक परिस्थिति वो क्या चीज है कि वस्तु के स्वरूप को निरूपण करता है। सिद्धांत शब्द का अर्थघटन भी वही है, सिद्ध अंत, अंत में जो सिद्ध हुआ, लास्टली फाइनल हुआ, उसको कहते हैं सिद्धांत। मतलब वस्तु का जो स्वरूप आखिर में जो है, उसको जिस शब्द में कहा जाए उसको सिद्धांत कहने में आता है। तो सिद्धांत है वो वस्तु के स्वरूप को दिखाता है, बतलाता है, और वस्तु के स्वरूप को समझे बिना आत्मज्ञान तो होता नहीं किसी को, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती नहीं। पर ऐसा सिद्धांतिक ज्ञान वैराग्य उपशम के बिना किसी को होता नहीं। इसलिए वैराग्य उपशम आदि का बल बढ़ाने के साधन का आराधन हमेशा हमेशा करने का पुरुषार्थ मुमुक्षु को होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मुमुक्षु को सत्संग करना चाहिए, वैराग्य समेत सत्संग करना चाहिए, और अपने जो विषय कषाय के जो परिणाम है जीवन में उसके रस की मंदता होनी चाहिए, उसको उपशम कहने में आता है। जिसको विषय कषाय के परिणाम में शांत रस होता है उसको, उस शांति को उपशम कहने में आया है। विचार की उत्पत्ति होने के बाद, विचार के मैंने कहा आत्मकल्याण के विचार के उत्पत्ति होने के बाद अध्याय है। वर्धमान स्वामी जैसे महात्मा पुरुष ने बार बार विचार किया, किसका नाम लिया, महावीर स्वामी का नाम लिया, कि महावीर स्वामी को जब आत्मकल्याण का दृढ़ विचार आया कि मुझे मेरा आत्मकल्याण अब कर लेना है, जल्दी से जल्दी शीघ्र करना है, तो बाद बाद उन्होंने विचार किया कि इस जीव का अनादि काल से चारों गति में अनंत से अनंत बार जन्मना मरना हुआ है, जन्म मरण हुआ है, फिर भी अब भी यह जन्म मरण आदि की स्थिति क्षीण क्षय हुई नहीं है, तो अब वो कैसे प्रकार से क्षीण करनी चाहिए, क्या आया पहला बात। सबसे पहली बात कौन सी आई, ये परिभ्रमण की चिंतना वाली आई। किसके लिए बात बोले, महावीर स्वामी को भी यही हुआ था। ऐसा कहकर के हम जिसके शासन में गुजरते हैं कहें कि अगर आप इनके शासन में हैं तो उसने उसको जैसा हुआ ऐसा तुमको होना चाहिए। तुमको जन्म मरण की चिंता होती है क्या कि मेरे आत्मा अनंत काल से जन्म मरण कर रहा है, पर अब भी वो जन्म मरण करेगा, इसकी कोई चिंता मुझे नहीं हो रही है, ये क्या बात है। एक मरण को दूर करने के लिए प्रयत्न होता है, एक मृत्यु नहीं हुए हमारी, क्या हमारे घर के कोई एक सदस्य की, एक भी व्यक्ति के घर में मृत्यु हो वो कोई चाहते नहीं है, और उसको बचाने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न किया जाता है। और अनंत जन्म मरण के प्रयत्न छोड़ो, चिंता भी नहीं हो रही है, अनंत जन्म मरण मिटाने के लिए पुरुषार्थ और प्रयत्न, इसका इलाज करना चाहिए, वो तो एक बाजू रहो, उसके विषय में चिंता भी नहीं हो रही है, निश्चिंत होकर के हम चल रहे हैं, वहां बुद्धिमानी। एक मरण की तो चिंता का पार नहीं और अनंत की बिल्कुल चिंता नहीं। बुद्धिमानी कहाँ की है? एक मरण की जितनी चिंता हुए दो मरण की डबल, दस मरण की दस गुनी, सौ मरण की सौ गुनी और अनंत की अनंत गुनी होनी चाहिए, जबकि बिल्कुल नहीं होती है। कितना बड़ा विपर्यास है। एक वत्ता एक दो होता है ऐसा हमारा गणित भी उधर हमारी बुद्धि में नहीं है क्या? हम तो बनिए लोग हैं, उंगली पे उंगली रखने वाले के एक एक और एक दो हुआ, एक और एक दो हुआ, और ये अनंत की चिंता नहीं। ये हमारे गणित का ज्ञान कैसा फेल होता है। कहां से प्रश्न कहां से उठाया? देखो बात करते करते कहां से प्रश्न उठा लिया है। आत्मकल्याण के विचार की उत्पत्ति होने के बाद वर्धमान स्वामी जैसे महात्मा पुरुष ने बार बार ऐसा विचार किया कि अरे मेरे जीव का अनादि काल से चारों गति में अनंत से अनंत बार जन्म मरण हुआ है, उनके विचार में आया। भगवान महावीर स्वामी का इतिहास ऋषभदेव स्वामी की उपस्थिति से मिलता है पुराणों में, इसके पहले से नहीं मिलता है। क्योंकि आत्मा तो अनंत काल से सब होती है, हमारी आत्मा भी अनंत काल से है और सभी तीर्थंकरों सिद्धों की आत्मा भी अनादि काल से है। इतिहास तो कहीं अनंत काल का किसी का भी नहीं मिलेगा, एक का भी नहीं मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी का जीव ऋषभदेव भगवान के काल में उनके पौत्र के रूप में जन्म हुआ था, ग्रैंडसन। वो भी उनके विरोधी, क्या कि ये मेरे दादा है, बहुत गड़बड़ है इसमें गालियां देते थे, गालियां इस जमाने में बोलते थे, महामायावी है क्या ये जो समुद्रण वगैरह आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सब इनका मायाचार है, मायाचार। पहले यहां कुछ नहीं था लेकिन मायाजाल बहुत है इसके पास, तो देखो कैसा बनाया है। हम यहां से दूसरी जगह जाएगा ना ये खत्म हो जाएगा, वो माया समेट लेंगे, बहुत मायावी है। तथा भी ऐसा ही तो उनको भी मानने वाले मिलते थे। बात सच कहता है, देखो ऐसा ही हुआ। उनको ज्ञान है, बहुत अच्छा जानता है, अच्छे अच्छे को पहचानता है, सबको मिलता है, अनुसरण करने वाले वाले तो सबको मिलता है। इसका मतलब नहीं है कि वो सही है। वो बहुत बार वो नरक में गए, निगोद में गए, एक कोड़ा कोड़ी सागर कैसे गया उनका, नरक निगोद में बहुत बार गए। और दस भाव पहले, महावीर स्वामी का दसवां भाव पहले उस सिंह के भाव में नरक में से आए हैं। अज्ञानवा भाव उसका नरक का था, महावीर स्वामी का, वो नरक में से सिंह हुए। सिंह के भाव में उसका भव्यता का परिपाक हुआ और सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। तो उनको पहला विचार वो आया, सम्यक दर्शन होने के पहले विचार क्या आया कि मेरे आत्मा अनंत काल से जन्म मरण कर रही है और अभी भी मेरे इस कारण का नाश करने का कोई उपाय नहीं किया है, ये मेरी गंभीर भूल है। तो उसको किस प्रकार से क्षीण करना, इस जन्म मरण को किस प्रकार से मिटाना, बस ये चिंतना का वचनामृत है कि कैसे मिटाया जाए, कैंसर हो तो कैसे मिटाया जाए। वो तो मृत्यु के पहले का स्टेज है, मृत्यु तो बाद में होता है। और लोग जानते हैं कि कैंसर मिटता नहीं है, फिर भी उसको मिटाने की चिंता हुए बिना रहती। जब ये परिस्थिति है तो अगर हम वास्तविकता से विचार करें तो इसकी चिंता इस समस्या के प्रमाण में आए बिना रहेगी नहीं। और ऐसी कौन सी भूल इस जीव की रहा करी है, ये बहुत मार्मिक बात लिया है जो बलदेव का प्रतिपादन करने की शैली है, बहुत गंभीर, बहुत गंभीर। कि ये चालू रहा, ये जन्म मरण चालू रहा तो ऐसी कौन सी भूल रह गई, क्योंकि साधन तो बहुत किया, जब तक भी बहुत किया, शास्त्र भी बहुत पढ़े, संयम भी बहुत पाला और दयादान यात्रा भी बहुत किया, वह साधन बार अनंत कियो। लेकिन कोई ऐसी भूल रह गई है कि सभी साधन निष्फल गए, ऐसी कौन सी भूल इस जीव की रहा करी है कि जो भूल का अब तक परिणमन चालू रहा है, उस भूल का परिणमन, वो भूल भी गई नहीं, ऐसी कौन सी भूल रह गई कि जो भूल अभी गई नहीं। इस प्रकार से बार बार अत्यंत एकाग्रपने से महावीर स्वामी ने क्या किया कि इस प्रकार से बार बार अत्यंत एकाग्रपने से सद्बोध के वर्धमान परिणाम से विचारणा कैसे होती है, जो सही विचारणा कहते हैं, सुविचारणा कहते हैं, आत्मकल्याण को मुख्य करके सद्बोध के वर्तमान परिणाम से विचारते विचारते जो भूल भगवान ने देखी है, यह बात जिनागम में थाम थाम कही है, छिपे नहीं रखे, हमारे आगमों में वो बात छिपी हुई नहीं है, फिर भी ये एक अफसोस की बात है या कम नसीब की बात है कि हमारा अभी तक ध्यान गया नहीं, आगम पढ़ने पर भी हमारा ध्यान नहीं गया। आज भी ये परिस्थिति देखने में आती है आगम पढ़ने वालों के, कि मूल बात पर ध्यान नहीं जाता है और मूल भूल ऐसी के वैसी रह जाती है। बीजभूत भूल बोला है यहाँ, मूल शब्द नहीं प्रयोग किया, बीजभूत भूल ऐसा कहा, क्योंकि मूल तो बाद में होता है, पहले बीज होता है तो वहां तक हो गए, ये बीजभूत भूल है वो जीव की रह जाती है। एक बड़ी कम नसीब घटना है कि ऐसी बात, महत्वपूर्ण बात है, वो रह जाती है। क्या कहा, इस प्रकार से बार बार अत्यंत एकाग्रपने से, देखो विचारणा कैसी होती थी, अपने आत्मकल्याण की विचारणा भी बहुत एकाग्रता से चली थी महावीर स्वामी भगवान को अपनी मुमुक्षु की भूमिका में। एकाग्र रूप से मतलब क्या, अत्यंत एकाग्र रूप से, ये चिंतना में आए तो छूट नहीं सकते थे उससे, इसका रास्ता क्या, मुझे एक बार भी नहीं मरना है, मेरा अनंत जन्म मरण का प्रकार चालू रहेगा, अरे अरे क्या हो जाएगा, वहां से छूट नहीं सकते थे, अत्यंत एकाग्रता हो जाती थी इस चिंतना में। और सद्बोध के वर्धमान परिणाम से, और जो भी बोध सुनने में आता था उसमें उनके परिणाम बढ़ते जाते थे, उसका रस बढ़ता था, उसका उत्साह बढ़ता था, उमंग बढ़ता था, और ऐसे उत्साहित परिणमन से विचारते विचारते जो भूल भगवान ने देखी, यह बात जिनागम में ठाम ठाम कही है, क्योंकि इस बात पर तो भगवान का वजन गया। और जब दिव्य ध्वनि छुटी समोसरण में, तो उन्होंने ये बात प्रसिद्ध रूप से कही, जोर शोर से कही, और गणधर आदि आचार्यों ने आगमों में अच्छी तरह ठाम ठाम वो बात को बताई है कि जो भूल जान करके उस भूल से रहित मुमुक्षु जीव हो जाए, वो भूल जान करके उस भूल के से रहित हो जाए, इसलिए ठाम ठाम कही है। ये बुद्धि वालों के लिए बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लग जाए ऐसी बात है। जीव की भूल देखते हुए तो अनंत विशेष लगता है, ये बहुत बड़ी भूल है, अनंत ही बड़ी भूल है। परंतु सर्व भूल, जीव की भूल को देखते हुए भी कितनी जीव भूल करता है बार बार, कि अनंत प्रकार की अनंत भूल करता है, फिर भी सर्व भूल को, भूल की बीजभूत भूल, सर्व भूलों का बीज जह रहा है ऐसी बीजभूत भूल, यह जीव को प्रथम से प्रथम, पहले से पहले से, यानी सबसे पहले विचारनी चाहिए, विचारना योग्य है। इस बीजभूत भूल का सबसे पहले विचार करो, दूसरे दूसरे छोड़ दो। क्या करते हैं मुमुक्षु जी भी, कि ऐसा करता है कि देखो हमको गुस्सा आ गया, ये हमारी भूल हो गई, हमको क्या गुस्सा आ गया, देखो हमको ऐसे परिणाम हो गए, वैसे परिणाम हो गए, अनेक प्रकार की छोटी छोटी बातों आगे भूल की बात आगे करता है। लेकिन बीजभूत भूल क्या है, वो भूल को वो देखता नहीं है। जो महावीर स्वामी ने देखी, ये भूल सबसे पहले देखना चाहिए, तो जो सभी भूल के मूल में वो भूल पड़ी है, इसलिए ये भूलों की परंपरा अनंत प्रकार की हो रही है। यह बीजभूत भूल जीव को सबसे पहले विचारनी चाहिए, कि जिस भूल का विचार करने से सभी भूल का विचार होता है, इस भूल का विचार होने से सभी भूल का विचार यथार्थ प्रकार से हो सकेगा, और यह भूल मिटने से सभी भूल मिट जाएगी। एक भूल सुधार लो ऐसा कहते हैं। देखो, दोष अनंत प्रकार ना, अनंत प्रकार के दोष हैं, सभी को मिटाने का अभिप्राय होता है, लेकिन बहुत सुगम और सरल रास्ता बता दिया कि एक बीजभूत भूल मिटा दो, आपके सब दोष मिट जाएंगे, अपने आप मिट जाएंगे। कृपालु देव ने इस पत्र में इस बीजभूत भूल का नाम नहीं दिया है। इतना वजन देने के बाद भी इस बीजभूत भूल का नाम खोला ही नहीं, मुमुक्षु को जिज्ञासा में खड़ा रख दिया, क्यूरियोसिटी में आ जाए, उसको कौतूहल हो जाए, कह रहे ऐसी कौन सी बात होगी, और बात बहुत मामूली है, बात इतनी बड़ी नहीं है। एक गैया भैंसा चराने वाले गमार को, भरवाड़ को, बरबारी को भी इतनी अकल होती है, उतनी सी बात है, जो हमारे बड़े बड़े बुद्धिमानों को वो बात समझ में नहीं आती है। ये बुद्धिमानी कहाँ की, जैसे दृष्टांत ले ले कि किसी ऐसे अनपढ़ या बिल्कुल कम बुद्धि वाले गंवार जिसको बोलते हैं गांवड़ा का गंवार आदमी है, उनको पेट में दर्द होता है, रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, वो क्या करेगा? किसी के पास कोई लंबी चौड़ी बुद्धि नहीं है, वो दवाई को भी जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता, वो करेगा क्या? उसकी बुद्धि में क्या आएगी बात बताइए? जितनी भी कम बुद्धि है, कम अक्कल है, उसमें वो क्या करेगा?
पेट पकड़ लेगा और ऐसे बैठ जाएगा,
लेकिन उसके पेट पकड़ने से थोड़ी ना मिटता है, वो क्या करेगा? दर्द तो मिटता नहीं है और सहा जाता नहीं, रहा जाता नहीं, क्या करेगा? क्या करेगा चंद्रेश भाई? पेट पकड़ के बैठे रहेगा क्या? कि इसका मिटाने वाला कौन है? तो घर से बाहर निकलेगा, वही डॉक्टर के पास जाने के लिए का विचार उसको सबसे पहले आएगा। ये विचार सबसे पहले आएगा कि इस दर्द को कौन जानता है, कौन मिटाता है, इसके पास मुझे जाना चाहिए। तो घर से बाहर निकला, बाहर निकला तो पहले दवाई की दुकान आई, तो दवाई लिया क्या कि नहीं? तो दुकानदार को बोला कि मेरे पेट में दर्द है, कोई दवाई दे दो। तो कैसे दे, दवाई नहीं देते, हमारे पास तो 100 दवाई है, 50 दवाई है, कौन सी दवाई है? तुम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले आओ। पर किताब पढ़ने का था, उसका कोई गुंजाइश नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने अच्छी अच्छी किताब सब दर्द पर लिखी है, लेकिन उसको पढ़ने को वो बैठेगा नहीं, न मेडिकल स्टोर से दवाई लेगा, न सब दवाई खा जाएगा। तुमको दवाई नहीं मालूम है, 50 दवाई तो 50 दे दो नहीं, मैं खा जाऊं, ऐसा भी नहीं करेगा। अक्कल नहीं है तो भी नहीं करेगा ऐसा, वो डॉक्टर के पास जाएगा। बस उतनी अक्कल हमारे में आ जाए तो ये बीज भूत भूल मिट जाएगी। जो भूल किया है वही भूल किया है कि हम कभी ज्ञानी के पास नहीं गए। हमने क्या अक्कल लगाई? हम तो पढ़े लिखे हैं, चलो किताब पढ़ने लगो, समय सार पढ़ो, फलाने शास्त्र पढ़ो, फलाने शास्त्र ज्ञान सार पढ़ो, उत्तराध्ययन पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा अक्कल चलाई। या कुछ न कुछ करने लगे कि चलो यात्रा कर लो, उपवास कर लो, भक्ति कर लो, दान दे दो, वो कर लो, वो कर लो, ये सब दवाई फैल जाएगी और ये पुस्तक ज्ञान भी फैल जाएगा। डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। बस ये बीज भूत भूल मिट गई, उनकी सब भूल मिट जाएगी। अगर ये बीज भूत भूल रह गई तो एक भी भूल जाने वाली नहीं है और परिभ्रमण मिटने वाला नहीं है। तो बहुत गंभीरता से बात का प्रतिपादन कर दिया है इस पत्र में, और विस्तार है बाद में लेंगे।